अर्पिता के चेहरे पर हाथ रखते हुए समर्थ ने धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, आप हमारा सच्चा प्यार थीं, और एक बार को तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमने आपको खो दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो भगवान आपको उनसे मिला ही देता है। समर्थ ने अर्पिता को कसकर अपने गले लगाया और चुपचाप आंखें बंद करके वहीं सो गया। अगले दिन सुबह अर्पिता की आंख खुली और उसने देखा समर्थ रूम में नहीं था। अर्पिता उठकर बैठी, उसने इधर उधर देखा। जब उसे समर्थ नजर नहीं आया तो अर्पिता सीधे उठकर रूम से बाहर निकली। अर्पिता ने देखा कि समर्थ पहले से ही उठ चुका था। समर्थ पूरी तरह से रेडी लग रहा था, उसने थ्री पीस सूट पहना हुआ था। अर्पिता उसे देखकर थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या बात है समर्थ, आप कहीं जा रहे हैं क्या? समर्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ हम ही नहीं, आप भी हमारे साथ चल रही हैं। फटाफट रेडी हो जाइए, हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब अगर हमें हनीमून पर चलना है तो थोड़ी शॉपिंग तो बनती है ना। अर्पिता ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। समर्थ उसके पास आया, उसने अर्पिता की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब आप हमें अपनी हैरानी से क्यों देख रही हैं, हनीमून पर तो चलना है ना हमें। अर्पिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने कहा, आप तो जल्दी उठ गए थे, तो हमें भी उठा लेते। समर्थ ने कहा, क्या करें, हमारी प्यारी सी वाइफ सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि हमारा मन ही नहीं किया कि हम उन्हें इस तरह नींद से जगा दें। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता के गाल पर किस किया और अर्पिता के कान के पास जाकर कहा, चलिए जल्दी से रेडी होकर आइए, फिर हम चलते हैं। अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत रूम के अंदर गई और अपने कपड़े लेकर सीधे तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नंदिनी की मॉम मुंबई जा चुकी थी। नंदिनी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी मेन दरवाजे पर सूट पूट पहने हुए एक आदमी आया। वो आदमी जैसे ही हॉल के अंदर आकर खड़ा हुआ, उसने उदय के पापा की तरफ देखा। वो तुरंत उठकर खड़े हुए और उन्होंने सामने की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर, वेलकम। उनकी ये बात सुनकर उदय नंदिनी हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगी। उदय को नहीं पता था कि वो आदमी कौन है और इस तरह से उसके घर में क्यों आया है। जैसे ही उदय के पापा उठकर उस आदमी के पास गए, उदय भी वहीं पर आकर खड़ा हो गया और नंदिनी उदय के पीछे खड़ी थी। तभी उदय के पापा ने उससे बात करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मैंने आपसे बताया था ना कि मेरी बहू के बारे में, मिलिए उनसे, ये है नंदिनी। नंदिनी इधर आइए बेटा, उदय के पापा ने नंदिनी को अपने पास बुलाया। नंदिनी जैसे ही वहां पर गई, सामने खड़े उस आदमी ने नंदिनी से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिसेज नंदिनी, आपको भला कौन नहीं जानता, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मुंबई की बहुत फेमस मेकअप एक्सपर्ट हैं, राइट? नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी तरफ देखने लगी। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप इतनी बड़ी मेकअप एक्सपर्ट होकर मेरी कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो गई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कंपनी के भाग्य खुल गए। नंदिनी बड़ी हैरानी से मिस्टर कपूर की तरफ देख रही थी। उदय के पापा ने जब उसे इतना कन्फ्यूज होते हुए देखा तो उन्होंने उदय और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोले, नंदिनी बेटा, हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको एक बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर दिलाएंगे। मिस्टर कपूर, इनकी मॉडलिंग की बहुत बड़ी एजेंसी है और ये आपको अपनी कंपनी में एज अ मेकअप एक्सपर्ट के तौर पर ही रखेंगे। जितनी सैलरी आपको मुंबई में मिलती थी उससे 20% एक्स्ट्रा सैलरी आपको देंगे। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उदय ने नंदिनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर होश होते हुए कहा, नंदिनी, आर यू हैप्पी? नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उदय की मम्मी वहीं पर चुपचाप खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी। जब उन्होंने देखा कि उदय और नंदिनी को उसकी ये जॉब पसंद आ गई है तो वो भी चुपचाप इस बात के लिए मान गई और उन्होंने इस टाइम पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। मिस्टर कपूर ने कहा, तो ठीक है, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा लेंगे और आप कल से ही हमें ज्वाइन कर सकती हैं। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, उसने तुरंत उनकी बात मान ली और उसने उदय के पापा की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच पापा, मेरे लिए आपने इतना सोचा। उदय के पापा ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, और हम आपके लिए कैसे ना सोचते, वैसे भी हम पहले अपने बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी कर चुके हैं, बट अब हम अपनी कोई भी गलती नहीं दोहराएंगे। उदय ने जैसे ही उनकी ये बात सुनी, उदय उनकी तरफ देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया और उसे समझ गया था कि उसके डैड को अपने किए का सच में पछतावा है। उदय अपने डैड की तरफ बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देखने लगा। उसके दिल में अपने डैड और मॉम के लिए जो भी थोड़ी बहुत खटास थी वो शायद अब पूरी तरह से दूर हो गई थी। वो चारों अब एक साथ काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु घर से निकलकर सीधे ऑफिस की तरफ पहुंचा। ऑफिस में भी अभिमन्यु के चाचा नहीं थे, क्योंकि अभिमन्यु ने उन्हें जब उनका हिस्सा दिया तो अभिमन्यु ने उन्हें कंपनी से भी हटा दिया था। अभिमन्यु ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया था, शायद उन लोगों के लिए ठीक भी था। वहीं दूसरी तरफ मासा अभी भी अभिमन्यु से नाराज थी। इप्सिता ये बात जानती थी, इसलिए वो मासा को मनाने के लिए उनके रूम में उनसे बात करने के लिए गई। उसने मासा से बात करने की कोशिश की, लेकिन मासा ने उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसे रूम से जाने के लिए बोल दिया। इप्सिता चुपचाप वापस अपने रूम में आकर बैठ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, मासा, शायद हमसे और अभिमन्यु से अभी भी नाराज हैं,
पता नहीं उनका गुस्सा कब कम होगा। इप्सिता ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। इप्सिता ने जैसे ही फोन की तरफ देखा, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हम क्या करें? इस टाइम अगर हमने कॉल रिसीव किया तो? नहीं नहीं, अब हम मासा को और नाराज नहीं कर सकते। अब हम जानते ही हमें क्या करना है। इतना बोलकर इप्सिता ने मोबाइल फोन में दिख रहे उस नंबर को कट किया और उसे ब्लॉक कर दिया। इप्सिता ने फोन साइड में रखा और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, अब हम अपनी वजह से मासा और अभिमन्यु के बीच और ज्यादा डिफरेंस नहीं आने देंगे। पहले ही मासा अभिमन्यु से नाराज है और अब अगर उन्हें ये बात पता चली तो? वैसे भी अभिमन्यु जब हमारे साथ है तो फिर हमें नहीं लगता अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी अब हमें अपना फ्यूचर अभिमन्यु के साथ ही तो बिताना है, तो फिर इन सारी चीजों पर ध्यान देकर हम क्यों अपने और अभिमन्यु के रिलेशंस को खराब करें? इप्सिता इतना बोलकर वहीं चुपचाप बैठ गई और उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इप्सिता किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी।